ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हर दिन की तरह आज भी भगवद गीता के ऊपर लेक्चर होगा, तो आज आप सभी लोगों का स्वागत है और कृपया शांति बना के रखिए। हरे कृष्णा। तो स्लो रिस्टार्टेशन कीजिए पीछे। आवाज कितना है? भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 33 चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 33। तस्मात् त्वमुष्टि यशो लभ लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्वः राज्यं समृद्धम्। मये वेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रेण भव शवचिचिनः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मवेते निहता पूर्वमेव निमित्रमात्रेण भव सव्यसाचिनः। तस्मात् त्वमुष्टः यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। ममे वेते निहिता पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन्। वर्ड मीनिंग तस्मात अतएव त्वम तुम उत्तिष्ठः उठो यशः यस लभस्व प्राप्त करो जित्वा जीत कर शत्रुन शत्रुओं को भुंक्षः भोग करो राज्यम राज्य का समृद्धम संपन्न मया मेरे द्वारा एवः निश्चित ही एते ये सब निहिता मारे गए पूर्व एवः पहले ही निमित्र मात्रम केवल कारण मात्र भवः बनो सब साचीनः हे सभ्यसाची। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की। अतः उठो लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये और हे सभ्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्र मात्र हो सकते हो। तात्पर्य सभ्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके और इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्र मात्रम केवल कारण मात्र है। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्धजीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं, किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है। दृष्टि जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। ओम अज्ञान तिमिरान ध्यानश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं नैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथाम्बितं तं सजीवं सावद्वैतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणाम हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा। अध्याय 11 चल रहा है। अध्याय का नाम है विराट रूप। भगवान ने जो अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन के समक्ष, और आज का श्लोक नंबर है 33। तस्मा त्व मुष्टि यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंश राज्यम समृद्धिम मये वेते ही निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रह भव सभ्यसाचिन। अथ उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सभ्यसाची, तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तुम तो केवल युद्ध में निमित्त मात्र केवल हो सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। विराट रूप, भगवान का विराट रूप जो है वो समाज में बहुत प्रचलित है, उसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं। भगवान का विराट रूप यहाँ पर भी दिखता है, मंदिर में कहीं है फोटो है विराट रूप का? कहीं है इधर विराट रूप का फोटो? पीछे बैक साइड में है ना। तो भगवान के विराट रूप वैसे हम देख सकते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में। भगवान का ऐश्वर्य विराट हवा भी आ रही है कहीं से, देखो बंद कर दीजिए उसको, थोड़ा आवाज बढ़ा दी। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया अर्जुन को। तो भगवान के ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य की महिमा जान के अर्जुन को विराट रूप देखने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे, है ना, भगवान को समझ चुका था। तो कई बार क्या होता है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो फिर ऐसे कुछ बड़े कार्यों को देख के वो समझ सकते हैं। तो अर्जुन को जो भगवान ने विराट रूप दिखाया, उससे उसके अर्जुन के अलावा जो अन्य लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, समाज के सारे लोग, उनको भी विश्वास हो, उसके लिए भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, या अर्जुन इसलिए विराट रूप देखना चाहते थे, है ना। 10वें अध्याय में ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य की महिमा, इतना भगवान ऐश्वर्यशाली है और अर्जुन भगवान के सामने खड़ा हुए से, तो अर्जुन को उतना ज्यादा उसको विराट रूप देखने या फिर भगवान के बारे में उतने डिटेल की जरूरत नहीं। जो भगवान के सामने खड़ा है उसको ज्यादा जरूरत एक दृष्टि से नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उसका बहुत सारा महत्व है। इसलिए भगवान ने अपना विराट रूप ही अर्जुन को दिखाया। उसे देख सकते हैं आप भगवद गीता में 10वें अध्याय है जो भगवद गीता का, बहुत बहुत वो भी महत्वपूर्ण है। वैसे सारी गीता महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ कुछ श्लोक कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवद गीता का जो चतुश्लोकी भगवद गीता बोला जाता है, चार श्लोकों की भगवद गीता, वो 10वें अध्याय का 9 नंबर से 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 10.8 to 11, ये जो चार श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता बोलते है ना। चतुश्लोकी भागवतम भी होते है, और त्रिश्लोकी भगवद गीता भी होती है अभी, है ना, तीन श्लोकों का भी है एक। वो कौन से हैं, 15 अध्याय का 16 नंबर 17 नंबर और 18 नंबर श्लोक 15.16, 17 और 18, वो त्रिश्लोकी भगवद गीता बोलते हैं। तो जो चतुश्लोकी भगवद गीता है, श्री राधा रास बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर नेताय की, शिल प्रभुपाद की, जय हरे कृष्ण। तो पुनः 8:15 पुनः दर्शन खुलेंगे, तब तक के लिए आप लोग कथा सुन सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इन श्लोकों में, इन श्लोकों के रहस्य को सुन के अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से कि कृष्ण इज ओनली गॉड, और जो भगवान बोल रहे हैं वही मेरे लिए धर्म है, है ना। भगवान जो बोल रहे हैं वो मेरे को करना चाहिए, अपने कर्तव्य को करने के लिए, कर्तव्य को करने के लिए वो कर्तव्य की ओर खरा उतर गया था, मतलब कर्तव्य जो उसको भगवान बता रहे थे करने के लिए वो रेडी हो गया, भाई हो चुका था, समझ चुका था सही से। तो 8 नंबर श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभो, ये श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वैसे कई बार कुछ लोग भगवान को कृष्ण, भगवान कृष्ण ही भगवान है ये नहीं समझते हैं, तो इस श्लोक में भगवान ने खुद बोला है अहम सर्वस्व प्रभव, है ना। तो इसमें आप देखेंगे प्रभव शब्द का अर्थ है उत्पत्ति का कारण, मैं ही सब कुछ की उत्पत्ति का कारण हूं, या दूसरे शब्दों में प्रभुपाद इसको बोलते हैं प्रभव, मतलब मैं प्रभु हूं, भगवान खुद बोलते हैं भगवान हूं। इस श्लोक में बोलते हैं भगवान, में कृष्ण स्वयं खुद अपने मुंह से बोल रहे कि मैं भगवान हूं, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसने बोला है कि मैं भगवान हूं। तो इससे भी हम समझ सकते कि कृष्ण ही सुप्रीम भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। तो अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, तो भगवान के अनुसार इस भौतिक जगत में जितने भी कार्य होते हैं वो भगवान की अध्यक्षता में होते हैं, है ना। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है या मुझसे ही उत्पन्न होती है। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः, जो लोग बुद्धिमान हैं वो भली भांति जानते हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, इसलिए वो भगवान की प्रेमा भक्ति में अपने हार्दिक हृदय से, पूरी हृदय से, तल्लीनता से भगवान को एक्सेप्ट करते, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। ये श्लोक। दूसरा श्लोक है मच्चित्तः मत गत प्राण बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तस्ति माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मच्चित्तः, मच्चित्तः मतलब जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, मत गतः कृष्णा इज ओनली लाइफ, है ना। मत प्राण, मेरे प्राण मतलब भगवान है, बोलते ना कृष्णा ओनली लाइफ, तो इसका मतलब है वो लोग समझ सकते हैं जो बोलते हैं कि भगवान ही हमारा जीवन है, कृष्ण ही जीवन है। तो मच्चित्तः बोधयन्तः, वो क्या करते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, परस्पर आपस में डिस्कस करते हैं। कथयन्तस्तः, कौन से डिस्कस करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस या भगवान के बारे में वो डिस्कस करते हैं। माम नित्य हो, मेरे बारे में नित्य करते हैं, एक बार नहीं बोल रहे भगवान, नित्य मतलब कंटिन्यू करते हैं, हमेशा करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वही उनकी तुष्टि पुष्टि का कारण वही है उनका, उसी में वो रमण करते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। भक्त कौन है, तो भक्त की परिभाषा भी इस श्लोक के अंदर बताई गई, जो ये श्लोक में शब्द बताए गए इनके अर्थों के अनुसार अगर किसी के अंदर क्वालिफिकेशन है ये सब कर रहा है तो वो भगवान का भक्त है या भगवान का डिबोटी है, हम उसको बोल सकते हैं, है ना। और वो कोई दूसरे विषय के बारे में नहीं सोचता है, किसके बारे में, मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्तस् परस्परम, भगवान के बारे में कथा, भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो ऐसे लोगों को भक्त बोला जाता है। वैसे भक्त बहुत हैं, सब लोग किसी न किसी के भक्त हैं, तो वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं तो भगवान के बारे में ही कथा कीर्तन करते हैं, तो वो भगवान के वास्तविक भक्त हैं, रियल डिवोटी। और फिर जो 10वां नंबर श्लोक है इसमें भी बताया गया है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते, है ना। जो भगवान बताते हैं कि इसमें जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहे हैं, लग रहे हैं या लगे हुए हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, और जिसके द्वारा वो मुझको समझ सकते हैं, उनको स्पेशल बुद्धि देते हैं, भगवान स्पेशल बुद्धि देते हैं, सबको बुद्धि देते हैं, उनको एक अलग बुद्धि देते हैं, अनूठी बुद्धि देते हैं, जिससे वो भगवान को समझ सकते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने ऐसे नेत्र और ऐसा ज्ञान और ऐसी समझ दी कि अर्जुन भगवान को समझ सका। फिर 11 नंबर श्लोक है तेसाम सतत युक्ता नाम नौ तेसाम मा तेसा मेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जमम तमम नाशयंतः नाशयात्मनः भवतो ज्ञान दीपेन भाष्यता। मैं उन विशेष उन पर विशेष कृपा करता हूँ या विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ या स्थान देता हूँ जो ऐसे ज्ञान के प्रकाश दीप के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हो सकते हैं। भगवान उनको स्पेशल ऐसा ज्ञान देते जैसे अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया था, वैसे ही ऐसे भक्तों को भगवान ज्ञान देते जो भगवान को समझना चाहते। तो चार श्लोक जो है ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इन श्लोकों के द्वारा अर्जुन अच्छी तरीके से उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया था, समझ चुका था कि भगवान ही कृष्ण ही भगवान है और जो भगवान बोल रहे हैं वही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा धर्म है ना, अच्छे से समझ चुका था। फिर उसको 11वें अध्याय में अलग से विराट रूप देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सब लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भगवान है या भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो विराट रूप वाले भी भगवान कृष्ण है करके, इसलिए भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखा के सारे संपूर्ण जगत को ये घोषित किया कि कृष्ण ही भगवान है और जो कृष्ण बोलते हैं उसको करने से वो सबसे बड़ा धर्म है, और प्रैक्टिकल वैसा करके भी अर्जुन ने दिखाया। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जैसे शास्त्रों में कहीं कहीं पर बताए गए हैं, वैसे सारा शास्त्र सब कुछ सारी हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे, उसमें से कुछ चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं वो हमको आचार्यों के द्वारा या इसी ऐसे लेक्चर सुनने से हमको उसका ज्ञान होता है। तो ऐसे तीन जगह पर भगवान सारे शास्त्रों में तीन श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। भगवद्गीता के 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक जिसमें भगवान बोलते हैं क्या, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, है ना, भगवान की शरण में जाना, ये श्लोक। और दूसरा रामायण के प्रसंग में भी एक प्रसंग है, वहां पर भगवान बोलते हैं जो मुझे दासत्व रूप में मतलब अपने आप को मेरा मुझे अपने आप को दास समझ के मेरे को स्वामी समझ के मेरे को जो एक्सेप्ट करता है तो भगवान उसको तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरा है तीसरा एक प्रसंग आता है ब्रह्म पुराण में, तो वहां पर भगवान बोलते हैं, एक श्लोक है उसमें बताया गया है, अहम स्मरामि मद भक्ता ददामि ते पराम गति, जो भक्त मेरी शरण में मेरा स्मरण करते हुए मेरा चिंतन करते हुए करते हैं मैं उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ। भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का हमेशा चिंतन मनन करते हैं तो ऐसे भक्तों को भगवान परम गति स्वीकार करते हैं। ये तीन श्लोक तीन जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीन जगह पर भगवान ने बताया है कि ऐसा, ये तीन जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सब जगह है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम देख के समझ सकते हैं कि भगवान कैसे बताते हैं कि भगवान को कौन समर्पित हो सकता है और कौन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ना। वैसे आप देख सकते हैं जनरली महाभारत में, रामायण में, भागवतम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इस जैसा कि इस श्लोक में एक शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, निमित्त मात्रेन, है ना। तो भगवान एक्चुअली भगवान जिनसे भी कोई कार्य कराते हैं वो निमित्त मात्र ही होते हैं, लेकिन सारा कार्य भगवान करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी क्रेडिट नहीं लेते हैं, भगवान क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो हम देखते हैं, दो तीन उदाहरण हैं। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो महाभारत में भी जब पांडवों का शुरुआत से जब देखेंगे तो पांडवों का संरक्षण हुआ है भगवान कृष्ण और उनके चाचा विदुर के द्वारा, है ना, उनको शुरू में ही फिनिश करने का प्लान चल रहा था कौरवों का, लेकिन उनके जो भगवान है, मित्र भी हैं भगवान उनके, उनके कारण और उनके चाचा विदुर के कारण उनका संरक्षण हुआ है। और बाद में फिर भी बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी उनको ऐसा परीक्षा हुई उनकी, वो हमेशा खरे उतरे परीक्षा में पास हो गए, यहाँ तक कि युद्ध करने का प्लान भी नहीं था, भगवान गए तो भगवान ने बोला युद्ध मत करो, ये क्षत्रिय, इनको कुछ तो राज्य दे दो, कुछ दे दो, 5 गांव दे दो, बोला कुछ नहीं देंगे, भगवान शांति दूत बन के पर्सनली गए तो भगवान को भी नहीं समझे, भगवान ने विराट रूप दिखाया वो भी देखा नहीं, देख नहीं पाए, वैसे नजर नहीं थी, आंखें नहीं थी उनके पास, भगवान के प्रति विश्वास नहीं था और भगवान को ही बंदी बनाना चाहा। दुर्योधन आदि जो कौरवों के दल के जो लीडर्स थे या फिर जो कौरवों का जो दल था, वो सब आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे उनके जो पिता है वो भी अंधे थे धृतराष्ट्र, तो ये भी अंधे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे। भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की, जो सबका बंधन छोड़ते हैं उनको कोई बांध सकता है क्या? तो भगवान समझ गए कि अब ये नहीं समझने वाले हैं, फिर इसलिए युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, युद्ध की तैयारी हो रही है, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को, ठीक है आई वॉन्ट फाइट। सो भगवान को बोलते हैं कि सेनयोर वीर मध्ये रथम स्थापितम मेच्युतः, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो लोग मेरे से युद्ध करने की इच्छा से यहां पर एकत्रित हुए हैं, वो हैं कौन, उनको मैं देखना चाहता हूं, थोड़ा दिखा दो उनका शकल दिखाओ। जैसे शकल देखते हैं तो बाद में देखते हैं तो देखते देखते मोहित हो जाते हैं, सर देखने से सारा काम बिगड़ जाता है ना। तो उसे देखने के लिए तो है अच्छा चीज, भगवान के दर्शन करेंगे तो उससे भी आपको अच्छा होगा, लेकिन हम संसार में ऐसी चीजों को देखते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर मोहित हो जाते हैं, फिर हम अपने मार्ग से बिविल्डर हो जाते हैं, है ना। तो वैसे अर्जुन ने भी जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसको लगा कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, और बॉडीली प्लेटफॉर्म पर आ गए थे उस समय। तो भगवान ने उनको फिर धीरे 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 बताया कि आप तो आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप क्या देख रहे हो, शरीर देख रहे हो। तो भगवान ने फिर उनको आत्मा का ज्ञान दिया। फिर ऐसे बताते हुए दसवें अध्याय तक भगवान लेके जाते हैं, है ना। दूसरे अध्याय में भी अर्जुन बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर कुछ प्रश्न आ रहे थे, भक्ति में आने के बाद भी प्रश्न आते हैं ना, तो प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने। आंसर देते देते भगवद गीता 17 अध्याय तक चली गई, उसी 17 अध्याय में हो जाता, फिर 18वां अध्याय उसका कंक्लूजन है। फिर 10वें अध्याय में जब आती है भगवद गीता, तो अर्जुन भगवान के विराट रूप ऐश्वर्य को देख के सुन के पूरा समझ चुका था, है ना। तो फिर अर्जुन को ऐसे विराट रूप को देखने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए फिर क्या हो गया, अर्जुन को पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं तो समझ चुका हूं गीता, गीता की प्रासंगिकता अभी भी इतनी होने वाली है, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस्कॉन जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी आने वाला है, सब कुछ अर्जुन को पता था। तो अर्जुन ने इसलिए क्या किया, विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि अपना विराट रूप दिखाओ मुझे। तो अगर आप देखेंगे, जैसे निमित्र मात्र जो शब्द आया उसकी हम बात कर रहे थे, तो निमित्र मात्र शब्द जो देखते हैं, भगवान केवल लोगों को निमित्त बनाते हैं, करते हैं सब भगवान, है ना। आप सिंपल भी सुनते रहते हो, ऐसा करते हो, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बोलते तो हैं लोग, लेकिन उसको प्रैक्टिकल समझना है, उनको शास्त्र में कहीं पर पढ़ के समझना चाहिए भगवान ने कहां कहां पर ऐसा किया है, इसका एविडेंस क्या है, इसका सत्य क्या है, कहां पर भगवान ने ऐसा बोला है, कहां पर ऐसा प्रैक्टिकली बताया है। तो महाभारत में हम देखते हैं, महाभारत के सारे युद्ध में शुरू से लेकर अंत तक किसने फाइटिंग किया और किसकी अध्यक्षता में हुआ, भगवान की अध्यक्षता में हुआ। अगर अर्जुन का जो रथ था, जब देखेंगे पूरा महाभारत होता है, अर्जुन रथ से पहले नहीं उतरते, नहीं भगवान नहीं उतरते, भगवान बोलते अर्जुन को पहले तुम उतरो, वो बोलते नहीं नहीं आप उतरो, आप सीनियर हो, आप भगवान हो, आप उतरो, नहीं 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 पहले तुम उतरो। जब वो उतरता है तो फिर भगवान उसमें है, जब भगवान उतरते हैं तो क्या हो जाता है, खाक हो जाता है पूरा। भगवान को सब कुछ पता था, सारे प्लान के साथ भगवान ने किया था, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ तो ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ी हो जाएगा, जैसे वो लोग बोलते ना बाय चांस ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक वाला नहीं था, वो प्लानिंग के साथ था पूरा। तो पूरे महाभारत में हम देखते हैं भगवान की अध्यक्षता में ही सारा महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन को और युधिष्ठिर राजा को और पांडवों को भगवान ने उसका क्रेडिट दिया, विशेषकर अर्जुन को, है ना। लेकिन किया सब भगवान ने, और कहां पर ऐसा उदाहरण जहां पर भगवान ने सारा किया लेकिन भगवान ने दूसरे को क्रेडिट दिया। आप देख सकते हैं जब जरासंध को भगवान ने मरवाया, किसके हाथ से मरवाया, भीम। भीम ने कितनी बार मांग दिया, मार दिया था उसको, दो दो टुकड़े कर लिए थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि भगवान ने दिया उनको। तो भगवान ने बुद्धि दिया, भगवान ने ही मरवाया, भगवान ने बताया, सारा प्लान भगवान का था, लेकिन क्रेडिट किसको दिया, किसको दिया? भीम को। और फिर बाद में जरासन के जो बेटे थे उनको राज्य का राजा बना दिया जरासन को मारने के बाद। तो नहीं सॉरी, उनका उनका बेटे का नाम क्या था? सहदेव। सहदेव मैंने क्या बोला? कुछ बोला नहीं, बेटा बोला, बेटा ही था उनका, लेकिन सहदेव नाम था उसका। लेकिन ये वाला सहदेव नहीं था, पांडव वाला सहदेव, ये दूसरा सहदेव है। तो सहदेव को उन्होंने राज्य का राजा बना दिया बाद में। और फिर देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ये सारे जगत में चैतन्य महाप्रभु ने, वैसे एक तरीके से चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। प्रभुपाद बोलते हैं ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, इसलिए ये सारे जगत में चैतन्य महाप्रभु के चाहने से कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चाहते तो स्वयं इसका क्रेडिट ले सकते थे, वो खुद ही प्रचार कर सकते थे सारे विश्व में जाके, है ना, पूरे विश्व में जाके खुद प्रचार कर सकते थे वो। लेकिन उन्होंने अपने प्रिय भक्त ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को क्रेडिट दे रहा था, इसलिए उन्होंने पूरा क्रेडिट नहीं लिया, इसलिए उन्होंने प्रचार पूरे विश्व में नहीं किया, इंडिया में कुछ पार्ट में कुछ जगह पर किया और ऐसा स्पिरिट दिया, ऐसी परंपरा आई। फिर बाद में शिला प्रभुपाद उसी परंपरा में आते हैं और बाद में शिला प्रभुपाद के द्वारा वो पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करवाया। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते तो क्रेडिट खुद ले सकते थे ना, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अहम भक्त पराधीन। तो भगवान भक्तों के अधीन है या भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, भगवान की भक्ति का एक स्पेशल नमूना है। और देख सकते हैं भगवान रामचंद्र जब लंका को पूरा जीत के आए, रावण इत्यादि सबको मार के आए, तो अपने गुरु वशिष्ठ के सामने सारे जो वानर सेना है उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, दिस मंकी इज टॉप फाइटर, ऐसा इसने ऐसा अच्छा फाइट किया, इसने किया, उनके बारे में सब ग्लोरिफिकेशन, सब बानरों के बारे में, उसके बारे में, है ना, हनुमान के बारे में, और कौन था, सुग्रीव के बारे में, एक्चुअली भगवान ही सब कर रहे थे, है ना, लेकिन भगवान अपने गुरु के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, बोलते हैं बानर सेना अगर नहीं होती तो हम लोग नहीं जीत सकते थे। भगवान चाहे तो भगवान को सेना की क्या जरूरत है, भगवान खुद ही सेना है ना, भगवान से ही सेना निकलती है। तो लेकिन भगवान सबको क्रेडिट देना चाहते हैं, हम देख सकते हैं अपने जीवन में, हम लोग को भी ऐसा सीखना चाहिए। और जब हम लोग अगर कहीं पर कुछ करते हैं या कोई जगत में कोई कुछ काम करता है तो टॉप में उसका नाम चाहिए होता है पहले उसको, है ना, क्या बोलते हैं, लिस्ट में पहला नाम मेरा होना चाहिए, है ना, टॉप में मेरा नाम होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए, रसीद में तो होना चाहिए, अगर किसी ने दान भी दिया तो उसका नाम होना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसा क्रेडिट नहीं लेते, इसलिए भगवान है। और आप देख सकते हैं इस श्लोक में जैसा कि भगवान ने यश के बारे में बताया, अर्जुन को क्या बोला, यशस्वी बनो, यशस्वी भव भी बोला है एक जगह, है ना, इसके शुरुआत में अनुवाद में बोलते हैं क्या करो, आप यश अर्जित करो, यश अर्जित करो। तो यश भगवान दूसरों को देते हैं अपने कार्यों के द्वारा, लेकिन इस विशेष इस महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में जब भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल लेते, अर्जुन नहीं कर रहे थे, भगवान ने बोला यशस्वी भवो, यशस्वी बनो, यश प्राप्त करो, यशस्वी बनो, भगवान सबको बोलते कि यशस्वी बनो। यशस्वी कैसे बनेंगे, जब भगवान के निमित्त कार्य करेंगे, भगवान जैसा बोलेंगे, है ना, भगवान का सारे जगत में यश है, भगवान कुछ भी कार्य करते हैं तो यशस्वी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो यशस्वी नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसलिए हम यशस्वी नहीं हो सकते हैं। यशस्वी कब होंगे, जब हम कृष्ण के निमित्त कार्य करेंगे या जैसा कृष्ण बोलते हैं उनके अनुसार कार्य करेंगे, है ना। तो भगवद गीता का इंस्ट्रक्शन यही बताता है कि जो भगवान बोलते हैं उसके अनुसार कार्य करेंगे तो हमको यश मिलेगा। हरे कृष्णा, टाइम इज ओवर। श्री श्री राधे राधे बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।